ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा की महिमा में आता है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवन। तो वो ऊंचे से ऊंचा भगवन हमें जो कुछ भी देते हैं वो भी सबसे ऊंचे से ऊंचा है, और उसके लिए क्या देते हैं जो सबसे ऊंची है वो है श्रीमत, ईश्वरीय मत। और सचमुच हम देखते हैं जो बाबा की हमें श्रीमत मिलती है वो केवल ऊंचे से ऊंची ही नहीं है, लेकिन वो कितनी कल्याणकारी है। समय अनुसार चाहे अन्न की शुद्धि कहो, चाहे संग की शुद्धि कहो, चाहे योग करने की बात कहो, चाहे अमृत वेले उठने की बात कहो, वो सब ऊंचे से ऊंची मत है। और हम बच्चे उस ऊंचे से ऊंची मत पर चलते हैं तो बाबा ने टाइटल दिया है जो उस ऊंचे से ऊंची मत पर चलते हैं उनको बाबा क्या नाम देते हैं, ईश्वरीय मत वाले। तो हम कौन है, कौन है हम, ईश्वरीय मत वाले। वैसे मत वाले जब पता है किसको कहते हैं, जो अपनी मर्जी से चलता है, किसी की सुनता नहीं है, कहते ये तो बड़ा मत वाला है, अपनी मति पर चलता है, किसी का मानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। लेकिन हम अपनी मत पर नहीं चलते, हम किसकी मत पर चलते हैं, भगवान की मत पर। तो श्रीमत का इतना गायन है श्रीमद भगवद गीता के रूप में, क्योंकि उसी मत से हम इतने ऊंचे बनते हैं। तो ईश्वरीय मत से क्या बन जाते हैं, देवता तो बनते हैं लेकिन विश्व का मालिक भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी भी इस ईश्वरीय मत का उल्लंघन नहीं करना, अगर उल्लंघन करेंगे तो क्या सजा होगी वो भी बाबा बताते हैं। इसीलिए सावधान भी करते हैं कि इस ईश्वरीय मत का उल्लंघन नहीं करो, अगर ईश्वरीय मत पर चलते रहेंगे तो तुम कितने पुण्य आत्मा बन जाएंगे, और अगर ईश्वरीय मत का उल्लंघन किया तो पाप आत्मा के पाप आत्मा ही रह जाएंगे। और केवल पाप आत्मा ही नहीं रह जाएंगे लेकिन 100 गुणा सजा के भी भागी बनेंगे। अब ये है ईश्वरीय मत, और उसके लिए बाबा हमें सावधान भी करते रहते हैं। तो आज बाबा ने ईश्वरीय मत की भी महिमा गाई है, और उससे हम कैसे पुण्यात्मा बनते हैं, देवात्मा बनते हैं, और अगर उसका उल्लंघन किया तो क्या सजा मिलती है वो भी आज बाबा ने कहा है। तो सारी मुरली इसी पर है, सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 19/5/2025 है। मीठे बच्चे, श्री मत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्री मत को भूलो मत, कभी नहीं भूलो। कुछ भी करो पहले ये सोचो ये श्री मत अनुसार है, अगर श्री मत अनुसार नहीं है तो मत करो। ब्रह्मा बाबा अगर होते तो ऐसे करते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो हर कदम पर श्रीमत का पालन करते थे। तो अगर ब्रह्मा बाबा ऐसे नहीं करते तो इसका मतलब श्रीमत नहीं है, तो हमें भी नहीं करना है। तो देखो, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अब अपनी मत को छोड़, एक बाप की मत पर चलो। मन मत वाले नहीं बनो, श्रीमत वाले बनो, ईश्वरीय मत वाले बनो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? भगवान हमें जो कहते हैं करने लिए, उसे हम पुण्य आत्मा बनते हैं, देवात्मा बनते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि युक्ति क्या है, कैसे बने पुण्य आत्मा? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को ही याद करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए पहला कदम है, सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को ही याद करो। फिर दूसरा कदम क्या है पुण्य आत्मा बनने के लिए? कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो, क्योंकि कर्म हमें तो विकर्म विनाश करने हैं, तो नए विकर्म तो नहीं बनाने हैं ना। तो कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। तीसरी बात, सबको रास्ता बताओ, अपनी दिल से पूछो यह पुण्य हम कितना करते हैं, दूसरों को रास्ता बताने का पुण्य कितना करते हैं। चौथा, अपनी चेकिंग करो, ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ये 4 बातें भी करो, कौन सी? बाबा को याद करो दिल से, प्यार से, सबको रास्ता बताओ और अपनी चेकिंग करो। अपनी दिल से पूछो हम पुण्य कितना करते हैं। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। हाँ, चेकिंग करके तो चेंज भी तो करना है, केवल चेकिंग नहीं। हाँ, कई बाबा कहते चेकिंग तो करते हैं लेकिन वो चेंज नहीं करते, अपने में परिवर्तन लाते नहीं, खाली चेकिंग करते हैं। हाँ बाबा, चेकिंग की, फिर क्या किया? तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। हम सभी शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, उनकी ही ऊंचे से ऊंची मत है। दुनिया ये नहीं जानती है कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमद् भगवद् गीता तो गाई है, लेकिन भगवान ये श्रीमत कैसे देते हैं ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए? बाबा कहते ये कोई नहीं जानते। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे ही नहीं सकते, क्योंकि सब देहाभिमानी है। तो देहाभिमानी जो होगा वो कौन सी मत देगा? देहाभिमान अनुसार ही देगा। तो इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है, और इसी मत पर चलने से ही हम पतित से पावन भी बन जाएंगे, पुण्य आत्मा भी बन जाएंगे, हमारे विकर्म भी विनाश होंगे, हम स्वर्ग के मालिक भी बन जाएंगे। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा बाबा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था, पहले तो हम भी नहीं जानते थे, और ये जो ब्रह्मा विश्व का मालिक बना था श्री नारायण, इनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं, क्या थे और क्या बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। सारा ही खेल है, क्या थे क्या बन गए, पूरा खेल के अंदर आ जाता। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई, हर कदम पर चेकिंग, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। तो ये है बुद्धि की लड़ाई, क्योंकि बुद्धि निर्णय करती है, राइट रॉन्ग को निर्णय करती है। मन तो इंद्रियों के वश अगर हो जाता है तो वो मन तो नहीं निर्णय कर सकेगा, इसलिए बुद्धि करती है। फिर बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, देह अभिमान में आते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं वो सब रॉन्ग, देह अभिमान के वश। वैसे भी जो भी कर्म किया वो रॉन्ग ही है। जो भी कर्म करते हैं सब रॉन्ग, सारी दुनिया ही रॉन्ग है, एक बाप ही राइट है, सच बोलने वाला। वो तुमको सच खंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए ना। सच खंड का जो मालिक बनाए उसकी मत पर तो चलना चाहिए ना। अपनी मत पर चलने से क्या होगा, धोखा खाएंगे, धोखा खाएंगे। परंतु वो है गुप्त, अब शिव बाबा तो गुप्त है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं तो वो मत हमको कहाँ से मिलती है, बाबा की मुरली से मिलती है, श्रीमत शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा देते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या समझते हैं, बाबा कहते हैं बहुत बच्चे गफलत करते हैं। कौन सी गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है, यानी ये सारी मुरलिया ब्रह्मा बाबा की है, ये ब्रह्मा बाबा ही बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा कहेंगे तो हम उसको इतना स्वीकार न भी करें, लेकिन ये भगवान की मत है, ये जब हम समझते हैं तो हम स्वीकार करते हैं। अर्जुन भी यही था ना, भगवान मुझे मत दे रहा है ये तो समझा ही नहीं, मेरा मित्र मुझे मत दे रहा है। श्री कृष्ण को उसी रूप में देखता था, लेकिन अंत में उसको रियलाइज हो रहा है ये मुझे कौन मत दे रहा है, ये भगवान हमें मत दे रहा है। तब उसने घुटने टेके, नहीं तो घुटने टेकने को तैयार ही नहीं था, लड़ने को तैयार ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं समझते हैं ये तो दादा की मत है। तो माया, ये क्यों समझते हैं दादा की मत है, माया श्रेष्ठ मत लेने ही नहीं देती है। बीच में वो मन मत या माया की मत आ जाती है। श्री मत पर चलना चाहिए ना, बाबा आप जो कहेंगे वो हम जरूर मानेंगे, ऐसे कहते हैं हम, बाबा आप जो कहेंगे हम जरूर मानेंगे। परंतु कई मानते नहीं है, कह भी देते हैं मानेंगे लेकिन मानते नहीं है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। लो बाबा ने सर्टिफिकेट दिया, अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने ही नहीं देती है, तो दोष किसका है, हमारा थोड़ी है, माया का है ना। हाँ, माया मत लेने देती ही नहीं। श्रीमत तो बहुत सहज है ना, दुनिया में कोई को ये समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान है, ये समझ ही नहीं है कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है, भगवान की मत तो मशहूर है, कौन क्या किस रूप में, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। तो श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलते नहीं। बाबा सावधान करते हैं पर उनकी मत पर नहीं चलते हैं। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्री मत पर चलना भूलो मत, भूलो मत श्री मत पर चलना। इस ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, ये तो कह ही नहीं रहा है। उनकी बात सुनो, वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान नहीं खाते हैं, अब भगवान आते हैं कितना निष्कामी है, इतनी सेवा करके जाते हैं पर कुछ भी लेते नहीं है, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मनुष्य तो थोड़ा स्वार्थी होगा ना, चलो मैं इनको अच्छी बात सुनाता हूँ, ये मुझे कुछ मदद करेगा, कुछ देगा। बाबा को तो कुछ भी नहीं चाहिए हमारे से, वो खाता पीता भी नहीं है। हाँ कोई तो चलो भाई, कई कहते ना भी हम इनके पास गए, इनको इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई, लेकिन पानी भी ऑफर नहीं किया। अब भगवान को तो पानी भी नहीं चाहिए, भोजन तो क्या, पानी भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं हाँ, वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं, खान पान भी नहीं खाते हैं। जी बाबा कुछ भी नहीं खाते हैं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। तो नंबर वन मत देते हैं कौन सी, सबसे नंबर वन मत कौन सी है, मुझे याद करो। इसलिए बाबा को बार बार ये कहना पड़ता है, ये नंबर वन मत है, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो, अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। ये तो जानते हो सब सब का पापों का घड़ा भरा हुआ है। हम ये नहीं समझे मैं तो अभी पाप कोई नहीं कर रहा हूँ, चलो अभी नहीं भी करते होंगे, श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन 63 जन्मों का तो पाप का घड़ा कितना भरा हुआ होगा। ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है, इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिलता है, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं। बाबा कहते अगर है तो भी कितना है, जो गीता पुस्तक पढ़ते हैं सब, उसमें भी कितना है ज्ञान, आटे में नमक। तो गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो है नहीं, वो कोई बाप की बनाई हुई तो नहीं है, बनाई तो द्वापर युग से चलो बनाई तो भी तो कहेंगे भाई वेद व्यास, चलो गीता या जो भी व्यास भगवान कह देते हैं तो बता। बाबा कहते भगवान ने तो नहीं ये बनाई, ये भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, ये बहुत बड़ी बात, भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो बच्चों को समझाया है भक्ति का फल क्या मिलता है, भाई चलो भगवान आएंगे तो फिर भक्ति का फल कैसे देंगे, भक्ति का फल पहले ज्ञान देंगे, फिर ज्ञान से सदगति होती है, सच्चा फल तो वही है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति, सदगति भी सबकी होती है, सब आत्माओं की सदगति होती है, किसी की सतयुग में होती है, किसी की द्वापर में होती है, जो जो जिस समय आता है उस समय उसका थोड़ा सा पीरियड सदगति का काल है। ज्ञान से सदगति, सदगति भी सबको सबकी होती है और दुर्गति भी सबकी होती है, ऐसे नहीं केवल सदगति सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर के हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। कल हमको किसी ने भेजा कि अगर यहाँ एटम बॉम्ब गिरे तो क्या करना चाहिए, एटम बॉम्ब गिरे तो क्या करना चाहिए, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बहुत हिंस दी है, अभी यहाँ बंकर्स तो है नहीं, अभी तो कई देखे रहे बंकर के नीचे छिप जाना चाहिए, नीचे उसका असर नहीं, तो रेडिएशन फैलता है, कोई न भी मरे पर रेडिएशन से ही मर जाए। तो बहुत कुछ बातें बताइए। तो बाबा कहते हैं सतो पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है, अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता भी है देवी देवता, हाँ गीता क्या है, देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा, हम इतने ऊंचे देवता बन रहे हैं तो और धर्मों में जाने का क्या फायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं, हर एक के धर्म वाले उस धर्म की किताबें पढ़ते हैं, अपने धर्म को वो जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब धर्म वाले तो अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि भी अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो, तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भी भारतवासियों को बाप ने सुनाया है, हम सो देवता थे। हाँ, ये अर्थ है हम सो, सो हम, तो भारतवासियों को बाप ने सुनाया इसका अर्थ। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा ऐसे नहीं है, ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरुओं ने बनाई है। आत्मा सो परमात्मा, गुरु भी तो करोड़ों होंगे। कैसे करोड़ों होंगे? स्त्री के पति के लिए भी कहते ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है। अब इस हिसाब से हर स्त्री का पति भी गुरु हुआ तो आधी दुनिया तो साली गुरु ही हुई है ना। तो बाबा कहते हैं तो ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, पति स्त्री को कहते हैं। जबकि पति ही ईश्वर है फिर हे भगवान हे राम क्यों कहते हो? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। वो खुद भी कहते हैं, ये खुद भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि हम भी ऐसे थे पत्थर बुद्धि। कितने शास्त्र पढ़े बाबा ने, कितनी भक्ति की, कितनी यात्राएं की, हम भी ऐसे थे। कहां वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और कहां फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। तो गांव का छोरा कौन था? बाबा। तो अंतिम जन्म में वो आत्मा जरूर गांव का छोरा थी, लेकिन सत्युग के आधी जन्म में तो नहीं थी ना गांव का छोरा। तो बाबा कहते कहां फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं कि सत्युग आदि में तो वो सुंदर था, फिर कलयुग अंत में आकर के वो श्याम बना, पर उसी श्री कृष्ण को ही श्याम सुंदर कह दिया। अभी बाप ने तुमको समझाया है जो नंबर वन सुंदर वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कैसे बनेंगे श्याम से सुंदर? वो कॉस्मेटिक्स लगाने से नहीं बनेंगे। कैसे बनेगी आत्मा सुंदर? एक ही दवाई देते हैं, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तब से क्या हुआ? जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं है और एक भी पुण्य आत्मा नहीं है इस समय, एक भी सुंदर नहीं है। बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। शरीर को सुंदर बनाने लिए तो चलो बहुत कहेंगे हम कर देंगे, लेकिन आत्मा को सुंदर बनाने के लिए केवल बाप ही जिम्मेदार है। बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नर्कवासी श्याम है। क्योंकि क्यों बन गए नर्कवासी श्याम? क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। अग्नि में जो कुछ भी चीज जलती है वो तो काली हो जाती है ना, तो काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वो ही जगत जीत बनेंगे। नंबर वन है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। नंबर वन है काम, काम विकार के वश हुए माना पतित हुए। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, क्रोधी को क्रोधी कहेंगे, लोभी को लोभी कहेंगे, मोह वश वाले को, ये कितना मोह है इसमें, लेकिन पतित शब्द ये काम विकार के लिए है। तो क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि सतयुग आए नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना आए, अवश्य आना है। तो ऐसे ही हो ही नहीं सकता कि कलयुग के बाद सतयुग ना आए, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है, यही है इसी धरती पर। सृष्टि तो यही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सब यहाँ ही है, और कहीं दूसरे कोई ग्रह में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग नहीं है। झाड़ भी एक ही है, और कोई हो नहीं सकता, और किसी कोई और पृथ्वी हो जहाँ ये झाड़ हो जो बाबा बताते हैं, और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े लगाते हैं, कौन सी गपोड़े की जो कहते अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं तो अपने अंदर देखो, अब सत्य बात बाबा सुनाते हैं तो अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बने हैं। सतो प्रधान को ही पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है, अंडरलाइन बाबा करते, विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, मेरे बने हो, कहते हो ना मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा, तो मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर भी चलना है। ऐसे ही नहीं बस बाबा मैं तेरा, अब तू मेरा, तो मैं जो कहता हूँ उस पर भी चलो, तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो, नंबर वन पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, काम विकार तो है नंबर वन पाप, लेकिन और भी बहुत पाप होते हैं, चोरी, चकारी, ठगी आदि बहुत करते हैं, फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो, क्या नहीं समझो, कि हमने चोरी की व रिश्वत खाई, ये तो बाबा जानी जाननहार है, सब जानते हैं। हाँ चोरी की मैंने, हाँ तो भाई तुम बाबा को बताओ, बाबा तो जानते हैं ना, सब कुछ बाबा जानते हैं, बस ऐसे कहने से छूट नहीं जाएंगे। तो ये बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं, ऐसे कहते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा हाँ बाबा कहते चलो मैं जान भी लूं, पे फलाने ने चोरी की है, अच्छा कोई ने चोरी की, अच्छा बाप जानेंगे, फिर क्या, फिर क्या, क्या सजा नहीं देंगे, देंगे ना चोरी की। तो कई कहते हैं कि भगवान सब देखता है, हम जो कर्म करते हैं तभी तो सजा देगा। अब भगवान को देखने की क्या जरूरत है, उसको पता है जो करेगा सो पाएगा, तो उसमें देखने की क्या बात है या जानने की भी क्या बात है। तो अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे, चलो मान लिया जानेंगे, फिर क्या, जो चोरी की उसका दंड तो 100 गुना हो ही जाएगा। बाबा ने देखा या न देखा, जाना न जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कर्म किया उसका वो दंड 100 गुना तो हो ही जाएगा। तो दंड 100 गुना तो हो ही जाएगा, बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, हाँ भगवान का बच्चा जो शान शाह है उसका बच्चा बन के कोई चोरी करे, चोरी करता। शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, तो बाबा को ये भी अच्छा लगता, भंडारे में गए जो कुछ है खा लिया, अरे भाई चलो पूछो तो सही, जो बना रहे हैं ऐसे एक भोग लगना है, ऐसे तो नहीं उठाया और खा लिया, तो बाबा तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे ऐसे उठाया, तो कुछ लेना भी है तो जो इंचार्ज है उनसे पूछो, ऐसे नहीं तो मालिक हो तो तुम जो चाहो सो करो। तो कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, हाँ चाहे भंडारा कहो चाहे भंडारी कहो, ये तो बहुत बड़ा पाप है। भगवान के भंडारे से चोरी करता ये बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है तो उनको जेल बर्ड कहा जाता है, जेल बर्ड। हाँ वो बर्ड जो पक्षी होते हैं वो जैसे पिंजरे में होते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति होते चोरी की, चलो 6 महीने की सजा मिली छोटी मोटी की, फिर छूट गए, फिर चोरी की आदत है तो फिर की, तो पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाता है, ये पहले भी इसने चोरी की है, जेल में आया तो फिर 1 साल की सजा, चलो फिर छूटा, फिर चोरी की, फिर 2 साल की सजा, ऐसे सजा बढ़ती जाती है, वो जेल बर्ड बन जाते, पिंजरे के पंछी बन जाते। आज जेल भी तो ऐसा होता पिंजरे जैसा, वहां से देखती है तो कैसा लगता है जैसे पिंजरे से देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई कोई में चोरी की आदत होती है उनको जेल बर्ड कहा जाता है। ये है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना, ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है हाँ चोरी की या जो कुछ भी, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। इसलिए बाबा सावधान करते हैं उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेगी, चलो वो तो मिलेगी, और क्या मिलेगा, सजाएं तो बहुत मिलेगी और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। जिस घर में जन्म लेंगे वो कोई ऊंचा घर थोड़ी होगा। कई बार बताते ना, कहते ना धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया, लेकिन उसमें फिर एक और ऐड कर देते लाइन, चरित्र गया तो सब कुछ गया, एक जन्म के लिए नहीं गया, जन्म जन्म के लिए गया। क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ जन्म लेगा क्या वो चरित्रवान घर होगा क्या, वो भी वही जन्म लेगा जो चरित्रहीन घर होगा, तो जन्म जन्म गया। तो बाबा कहते हैं सजाएं भी बहुत मिलेगी और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे, तो अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ख्याल चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, कई तो सत्संगों में इसीलिए जाते हैं कहीं चप्पल चोरी करना है इसीलिए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ख्याल चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही है चप्पल चोरी करने का धंधा। हाँ एक कहानी किसी ने बताई कि एक चोर था। अब चोर कोई सत्संग में गया और उस सत्संग में उसने सुना गुरुजी से स्वामी जी से कि चोरी करना पाप है, और उसको इतना असर हुआ और एकदम का ठीक है मैं सन्यासी बन जाता हूँ। अब सन्यासी बन गया, गिरवे कपड़े पहन लिए, कफनी पहन ली, सब कुछ पहन लिया और सन्यासियों के संग में रहा। अब उसको तो चोरी करने की तो आदत थी, भले सन्यासी बन गया तो रात होती थी सब सो जाते थे सन्यासी, तो इसको चोरी की लत होती, तो वो क्या करता था, कमंडल जो हरेक का उसके पास ही होता था वो सन्यासी के साथ, तो कमंडल चोरी करता था। कमंडल चोरी की फिर कहाँ ले जाएगा, तो दूसरे के पास रख दिया, दूसरे का उठा के तीसरे के पास रख दिया, तीसरे का उठा के चौथे के पास। तो सवेरे जब वो सन्यासी उठे, अरे ये मेरा कमंडल तो है नहीं, ये मेरा तो है नहीं, कहाँ गया मेरा। तो पता किया कि कौन, तो वो एक व्यक्ति एक रात पर जागता रहा, देखना कि कौन उठाता है और दूसरी जगह रख दिया। चोरी नहीं की, मतलब उठा करके दूसरी जगह रखना भी तो चोरी है ना, तो पकड़ा गया। क्योंकि वो चोर था तो संस्कार ही उसका चोरी का था। तो देखो बाबा कहते हैं तो सब कुछ ईश्वर का है ना, ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है तो उसकी सजा 100 गुना बन जाती है, सजाएं भी बहुत मिलेगी, और फिर जन्म ब जन्म डर्टी घर, तो चप्पल चोरी करते धंधा ही है, जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल डर्टी है, ये है ईश्वर का घर। चोरी की आदत बहुत खराब है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। अभी एक कख उठाया, केवल एक दिन का उठाया, पर वो भी क्यों उठाया, आपकी तो ड्यूटी है नहीं, तो इसलिए बाबा कहते चलो एक कख का चोर सो लख का चोर। ये भी एक कहानी है कि एक सन्यासी था, कैसे वो किसी घर में रहा, उसको घर में रखा एक दिन, तो सवेरे रात भर उसने पता नहीं क्या क्या उठा लिया और सवेरे चला गया। तब उसने तो चोरी की थी, तो उसकी दाढ़ी में एक तिनका था, तो दाढ़ी वो वापस आया वो तिनका देने के लिए कि भाई ये आपके घर से तिनका निकला, वो जो चोरी की वो तो भूल, वो तो उसका तो कोई नहीं, पर तिनका देने आया। बताओ तिनका देने आना होता है क्या, कि भाई मैंने कोई उठाया नहीं है, ये तिनका भी मैं वापस कर रहा हूँ। तो था तो बड़ा चोर, तो बाबा कहते, इसलिए कहते कख का चोर सो लख का चोर, थोड़ा किया तो बहुत भी करेगा। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा, हम कितना पुण्य किया, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं, ये सब पूछो अपने से। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया, सारे प्रश्न है चेकिंग करने लिए। कितनों को रास्ता बताया, धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैजेस बनाते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। हाँ, लात मार रहा है नर्क को और स्वर्ग हथेली में है, तो लिखत है उसकी, तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चे अभी लिखत फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतनी विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं, थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा, दुनिया में थोड़ा ही पैसा मिल जाता है तो समझते हमारे जैसा कोई नहीं होगा। तो जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, थोड़े धनवान है पैसे वाले हैं तो बाबा की इतनी परवाह नहीं है, तो जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं उन्हें बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा की कदर नहीं तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की कदर कहाँ होगी, वो अपने उल्टे नशे में ही रहते हैं, उस धन का नशा है। बाबा एक बात कहेगा वो दूसरी बात कर लेगा, परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं हैं, फिर गिर पड़ते हैं। तो बाप कहेंगे अभी गिर पड़ा श्रीमत पर नहीं चला, तो बाबा क्या कहेगा, बाबा कहेगा ड्रामा, ड्रामा ही कहेंगे ना, और क्या करें, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं, अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी भी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, खुशी नहीं है, मुरझाते रहते हैं, वो अवस्था ठहरती नहीं है। तो बाबा ने समझाया है, अभी फिर और गहरी बात, बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी। अब छोटी सी रिहर्सल हो गई ना, छोटी सी रिहर्सल हुई, बड़ी नहीं हुई, विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होगी, आप प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे, अभी भी देखो कई देश समझते हैं ये भारत बहुत आगे जा रहा है, उनको हम कैसे कमजोर करें, बहुत समझ बहुत क्या क्या करते हैं। भारत को कमजोर करते जाएंगे, बाप खुद कहते हैं ये सब होना ही है, ये ड्रामा में नूंद है, नहीं तो विनाश कैसे होगा, विनाश कैसे होगा। कमजोर करने की कोशिश करेंगे और खुद को आगे बढ़ाएंगे तो विनाश होगा ना, तो नहीं तो कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, ओले गिरते ना, कितने ओले गिरते हैं, सारी फसल खत्म नष्ट हो जाती है। बर्फ की बरसात पड़ेगी फिर खेती आदि का क्या हाल होगा, लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी है, बतलाते थोड़ी है कितने मरे, लाखों मरते रहते हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, अब क्या बातें करो बाबा, वो भी हर मुरली में सुनाते हैं बाबा से क्या बात मीठी बातें करो, बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, बाबा की कमाल गाओ। आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे, फरमान है मुझे याद करो, फिर क्या फायदा हो, वो भी बाबा बताते हैं कि कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ, भगवान की गारंटी क्या है, सम्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हैं, है ना, एक भगवान की गारंटी किसी ने बनाया भी है लिखत, तो तुम फिर औरों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का, सबसे सहज रास्ता है मुझे याद करो। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्माएं, बाबा के पास आते हैं कहते बाबा हमने तो बहुत पाप किए हैं, चलो बाबा को बता भी दिए, अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, बाबा क्या कहेगा, अच्छा ठीक है तुमने ये पाप किया, बाबा को लिख के भी देते हैं, फिर बाबा उनको कहेंगे अच्छा अभी आगे पाप मत करो, जो किया सो किया, अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इसको कहा जाता है सहज याद, सहज याद, याद योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार के सिखलाते हैं हठ योग। इस बाबा ने तो गुरु बहुत किए हैं, अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। परित्राणायाम साधु नाम कहते ना, मैं सबका उद्धार करता हूँ, इन साधु सन्यासी सबका मैं ही उद्धार करता हूँ, इन सबका भी मुझे उद्धार करना है। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके, कोई भी देहधारी ऐसे कभी नहीं कह सकता है कि मैं सबका उद्धार करूंगा, ये कोई देहधारी की ऐसी कोई ताकत नहीं जो कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर ये गुरु कैसे बन सकते हैं, अपना ही उद्धार नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं ये गुरु कैसे बन सकते हैं, तो ये गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल एक बात बाप समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, क्या पूछो, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ये पूछो, फिर अपने आप को चेंज करो। बाबा कहते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद कितना किया, फिर पाप कितना किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। फिर बाबा कहते नहीं मेहनत नहीं, मोहब्बत से करो तो कुछ भी मेहनत नहीं, फिर बाबा कहते पुरुषार्थ करो, फिर बाबा कहते सरल बनो तो पुरुषार्थ भी सरल रूप से करो, पर दोबारा तो वो भूल ना हो ना। तो बाबा कहते ये बहुत मेहनत का काम है, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अंडरलाइन हाँ लास्ट सेंटेंस, बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है, बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करना है। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है, अगर खुशी नहीं है माना निश्चय भी नहीं है ना? तो अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए, ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर, अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। वरदान निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। जो बिल्कुल खत्म हा होपलेस निराशा हो गई कि अभी ये बचने वाला नहीं है, और कोई ऐसा डॉक्टर आ जाए वो कहे नहीं मैं इसको बचाऊंगा, और कोई ऐसी दवाई दे और वो होपलेस केस बिल्कुल मरनासन है और वो फिर से जैसे जागृत हो जाए, तो बाबा कहते हैं उसको होपलेस से फिर होप दिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। आते हैं ना कई बिल्कुल जैसे होपलेस, वाह मैं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता क्या ये होपलेस केस, तो उनमें होप भरते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं, दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, ब्राह्मण आपस में महादानी नहीं बनते एक दूसरे के प्रति। हाँ तो जो जो बाबा के बच्चे नहीं है अज्ञान में है उनके लिए कहेंगे महादान, आपस में जो मदद करते हैं एक दो को ये सहयोग हो गया। परिवार में कोई दान थोड़ी किया जाता है, परिवार में सहयोग दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वो तो सहयोगी साथी हो, साथी हो भाई भाई है, वो तो सहयोगी साथी हो भाई भाई हो। हम शरीक पुरुषार्थी हो सहयोग दो दान नहीं, ब्राह्मण परिवार में सहयोग दो उसको दान नहीं कहेंगे। स्लोगन सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो, प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख सदा प्रसन्न चित रहो तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। कल एक छोटी बच्ची ने डांस किया, आज है क्या? हाँ, आज दूसरी बच्ची आई, मैं भी डांस करूंगी। हाँ, तो इसीलिए चलो हमने कहा ठीक है तुम भी डांस करना। तो एक मधुबन निवासी और हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहने मुरली क्लास के तुरंत बाद फल विभाग में पहुंचे। तो अभी योग से पहले ये बच्ची डांस करेगी। क्या नाम है तुम्हारा?
ध्यानी।
इसका नाम है ध्यानी। आप मधुबन वाले जानते होंगे, इसने ये मम्मा का रोल बजाया था। मम्मा की ड्रेस पहन करके, साड़ी जैसे मम्मा पहनी ना, वैसे पहन करके स्टेज पर बैठ के